आज की इस गहरी चर्चा में हम प्राचीन यरूशलेम के एक राजा मतलब राजा हिस्किया के जीवन की एक बहुत ही ड्रामेटिक घटना का विश्लेषण करने वाले हैं।
हाँ, और ये कहानी सच में बहुत दिलचस्प है।
बिल्कुल। और हमारी जो आज की स्रोत सामग्री है ना, वो डॉक्टर जॉन ऑसवाल्ट के यशाया यानी आइजाया के अध्याय 38 और 39 पर दिए गए रिसर्च पर आधारित है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे एक मौत की सजा, फिर एक चमत्कारिक जीवनदान और उसके बाद हुई एक बहुत बड़ी कूटनीतिक भूल,
मतलब एक बहुत बड़ा ब्लंडर।
हाँ, एकदम सही कहा, एक बहुत बड़ा ब्लंडर। ये सब हमें मानव स्वभाव और एक पूर्ण हृदय की असलियत के बारे में क्या सिखाता है?
देखिए, ये विषय इसलिए भी बहुत प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ इतिहास के पन्नों की बात नहीं है, ये सीधे तौर पर इंसानी मनोविज्ञान से जुड़ता है। मैं कहूंगी कि ये हमारी अपनी कमजोरियों का आईना है,
है ना? मतलब अगर हम आज के मेडिकल विज्ञान की बात करें तो वहाँ एक तरह की सटीकता होती है, जैसे एक्सरे की मशीन।
हाँ बिल्कुल।
अगर हड्डी टूटी है तो एक्सरे में वो सफेद लकीर साफ दिख जाती है, डॉक्टर उंगली रखकर बता देता है कि दिक्कत यहाँ है। ये पूरी तरह से बाइनरी है, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है।
एकदम सही। और इंसानी दिमाग को ना ये स्पष्टता बहुत पसंद आती है।
हाँ, हम ऐसी चीजें चाहते हैं जिन्हें एक फिक्स्ड बॉक्स में फिट किया जा सके, लेकिन जब हम ऐतिहासिक फैसलों या आध्यात्मिकता की दुनिया में आते हैं तो वो एक्सरे मशीन पूरी तरह से बेकार हो जाती है,
क्योंकि वहां कोई स्पष्ट बाइनरी नहीं होती।
बिल्कुल, स्थिति जलेबी की तरह उलझी हुई और जटिल हो जाती है। और डॉक्टर ओसवाल्ड का जो शोध है ना, वो यशाया के इन अध्यायों में इसी जटिलता को बहुत अच्छे से उजागर करता है।
और मैं बता रही हूँ, इस जटिलता को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अगर हम यशाया की किताब के स्ट्रक्चर को देखें तो अध्याय 36 से 39 असल में पिछले अध्यायों मतलब 7 से 12 का एकदम उल्टा रूप है।
एक तरह की मिरर इमेज कह सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, मिरर इमेज। अध्याय 7 से 12 में राजा आहाज संकट के समय ईश्वर पर भरोसा करने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन जब हम अध्याय 36 और 37 में राजा हिजकिया की कहानी पढ़ते हैं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है।
क्योंकि उस समय अशूर यानी असीरियन साम्राज्य का खौफनाक हमला हुआ था, है ना?
हाँ, और अशूर के लोग अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे। वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ते थे। लेकिन उस भयानक दबाव में भी हिजकिया टूटता नहीं है। वो ईश्वर पर पूरा भरोसा जताता है और यरूशलम चमत्कारिक रूप से बच जाता है। तो इतिहास के नजरिए से हिजकिया ने वो परीक्षा पास कर ली थी जिसमें उसके पिता आहाज फेल हो गए थे।
मतलब वो एक हीरो बनकर उभरता है। यहाँ तक तो कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म के हैप्पी एंडिंग जैसी लगती है।
हाँ, लगती तो है।
लेकिन तभी हम अध्याय 38 और 39 में पहुंचते हैं और पूरी कहानी अचानक से एक बहुत ही निराशाजनक और डार्क मोड़ ले लेती है। मतलब नायक का पतन शुरू हो जाता है।
सही कहा।
और यहाँ जो चीज मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है वो सिर्फ ये नहीं है कि क्या घटना घटी, बल्कि वो घटना कब घटी। डॉक्टर ओसवाल्ड के नोट्स में ना कालक्रम या कहें टाइमलाइन को लेकर एक बहुत बड़ा पेंच सामने आता है।
टाइमलाइन का ये हिस्सा सचमुच हैरान करने वाला है। देखिए, यशाया के अध्याय 39 की शुरुआत में बेबीलोन के एक विद्रोही नेता मेरोदक बलदान का जिक्र है।
हाँ, मैंने पढ़ा वो।
अब अगर हम प्राचीन मध्य पूर्व के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स की जांच करें तो एक सॉलिड फैक्ट सामने आता है। 701 ईसा पूर्व में जब यरूशलेम अशूरियों के उस भारी हमले से बचा था, ये मेरोदक बलदान सत्ता में था ही नहीं।
रुकिए रुकिए, ये बात तो पूरी टाइमलाइन को ही पलट देती है। मतलब अगर मेरोदक बलदान 701 ईसा पूर्व में था ही नहीं, तो इसका मतलब है कि अध्याय 38 और 39 की ये बीमार पड़ने और दूतों के आने की घटनाएं 701 के बाद हो ही नहीं सकती।
बिल्कुल नहीं हो सकती। ऐतिहासिक और पुरातात्विक सबूतों के हिसाब से इन घटनाओं का सबसे सटीक समय 710 ईसा पूर्व के आसपास का बैठता है।
अच्छा,
इसका सीधा सा मतलब ये है कि हिस्किया की वो जानलेवा बीमारी और उसके बाद बेबीलोन के दूतों के सामने की गई वो कूटनीतिक भूल अशूर के उस महान बचाव अभियान से करीब 9 या 10 साल पहले ही हो चुकी थी।
यार, ये बात मुझे बहुत खटक रही है। मतलब अगर ये घटना 10 साल पहले घटी थी तो यशाया ने इसे अपनी किताब में 701 की घटनाओं के बाद क्यों रखा? क्या इतिहास लिखते समय उनसे कोई भारी भूल हुई थी?
नहीं, ये कोई भूल नहीं है।
तो फिर कोई भी इतिहासकार पहले की घटना को बाद में क्यों बताएगा?
क्योंकि ये एक बहुत ही स्मार्ट साहित्यिक और कूटनीतिक फैसला था। यशाया महज कोई डायरी नहीं लिख रहे थे जहां डेट के हिसाब से चीजें दर्ज हों। वो एक गहरा मैसेज दे रहे थे।
अच्छा, कैसा मैसेज?
डॉक्टर ओसवाल्ड समझाते हैं कि यशाया जानबूझकर घटनाओं के क्रम को बदलते हैं ताकि वे अपने श्रोताओं का ध्यान वर्तमान खतरे से हटाकर भविष्य के खतरे की ओर ले जा सके।
मतलब अशूर से हटाकर बेबीलोन की तरफ।
एकदम सही। अध्याय 36 और 37 तक मुख्य खतरा अशूर था, लेकिन यशाया जानते थे कि असली विनाश अशूर से नहीं बल्कि बेबीलोन से आने वाला है, जो कि आगे चलकर अध्याय 40 से 66 का मेन टॉपिक बनने वाला था।
अरे वाह, ये तो बहुत ही गजब का लिटरेरी ट्रांजिशन है। अध्याय 38 और 39 को यहाँ रखकर वे एक तरह से अशूर के एरा का एंड करते हैं और बेबीलोन के एरा का इंट्रोडक्शन देते हैं।
बिल्कुल, ये इतिहास को एक संदेश का वाहक बनाने जैसी बात है।
बहुत ही शानदार। खैर, अब जरा उस मुख्य संकट पर आते हैं जिसने हिस्केहिया की दुनिया हिला दी थी। राजा बीमार पड़ता है और यशाया पैगंबर आकर उसे एक सीधा और खौफनाक संदेश देते हैं।
हाँ, कि अपनी व्यवस्था कर लो क्योंकि तुम मरने वाले हो।
मतलब यहाँ कोई अगर मगर नहीं था, कोई शर्त नहीं रखी गई कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मर जाओगे, बस एक अटल फैसला।
हाँ, एक बिना किसी उम्मीद वाली घोषणा की, बस अब जीवन समाप्त होने वाला है।
ये तो किसी को भी डरा सकता है। जब कोई सर्वज्ञानी सत्ता ऐसा कोई फैसला सुनाती है तो हम यही मानकर चलते हैं कि वो फैसला पत्थर की लकीर होगा। लेकिन फिर राजा हिजकिया दीवार की तरफ मुंह करके फूट फूट कर रोता है, प्रार्थना करता है और अचानक फैसला बदल जाता है।
हाँ, उसे 15 साल का एक्स्ट्रा जीवन मिल जाता है।
तो मेरा सवाल यह है कि अगर फैसला तय था, अटल था, तो वो बदला कैसे? क्या इससे ईश्वरीय वादों की रिलायबिलिटी पर सवाल नहीं उठता?
ये सवाल आध्यात्मिकता के बहुत ही बेसिक पहलू को छूता है। देखिए, हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि उच्च सत्ता या ईश्वर एक मशीन की तरह काम करते हैं।
हाँ,
कि एक इनपुट डालने पर हमेशा एक ही आउटपुट मिलेगा।
बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर ओसवाल्ड इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये रिश्ता कोई मैकेनिकल चीज नहीं है, ये जीवंत है, ये स्थिर नहीं है, बल्कि हर पल सांस लेता हुआ डायलॉग पर आधारित एक रिश्ता है।
मतलब कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है जहां कोड लिख दिया गया और बस वही चलेगा। सही कहा। और इस डायलॉग का सबसे अजीब हिस्सा हिजकिया की प्रार्थना है। अगर हम नीनवे शहर और योना पैगंबर की पुरानी कहानी को देखें तो वहां लोगों को विनाश की चेतावनी मिली थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी गलतियां मानी, उपवास किया, पश्चाताप किया और उनका विनाश टल गया। लेकिन हिजकिया अपनी इस प्रार्थना में पश्चाताप का एक शब्द भी नहीं कहता।
बाप रे, मतलब वो कोई माफी नहीं मांगता?
बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन अहम पॉइंट है। हिजकिया माफी मांगने के बजाय अपने लंबे समय के आचरण को सामने रखता है।
अच्छा।
वो प्रार्थना में कहता है कि मैंने सच्चाई और पूर्ण हृदय के साथ आपके सामने अपना जीवन बिताया है और जो आपकी नजरों में सही था मैंने वही किया है। वो अपने ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला देता है।
हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी इस दलील को स्वीकार कर लिया जाता है। मतलब लंबे समय की लॉयल्टी और रिश्ते की गहराई की वाकई एक बहुत बड़ी कीमत होती है।
हाँ,
यहाँ स्रोत सामग्री में ना एक चलने के रूपक का इस्तेमाल हुआ है जो मुझे बहुत थॉट प्रोवोकिंग लगा। बाइबल में जब भी चलने शब्द का इस्तेमाल होता है, करीब 75% बार तो वो शारीरिक रूप से दो पैरों पर चलने के लिए नहीं होता।
तो किस लिए होता है?
वो जीवन जीने के तरीके के लिए होता है। एक निरंतर प्रक्रिया है, एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। इसके लिए एक चरवाहे और भेड़ का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है।
अच्छा, कैसे?
देखिए, जब कोई भेड़ चरवाहे के साथ चलती है तो वो उसके पीछे नहीं बल्कि उसके सामने चलती है। चरवाहा पीछे से अपनी आवाज और अपनी छड़ी से उसे दिशा दिखाता रहता है। भेड़ को नहीं पता होता कि मंजिल कहाँ है, लेकिन वो चरवाहे के डायरेक्शन पर भरोसा करके आगे बढ़ती रहती है।
ये बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी
है ना? तो हिजकिया का ये कहना कि वो सामने चला है इसी भरोसे को दर्शाता है।
चलने का दावा नहीं किया, उसने पूर्ण हृदय से चलने का दावा किया। हिब्रू भाषा में इस पूर्ण हृदय के लिए जिस मूल शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो शालोम है।
शालोम, मैंने सुना है ये शब्द।
हाँ, आम बोलचाल में शालोम का मतलब लोग सिर्फ शांति या युद्ध का न होना मान लेते हैं, लेकिन इसका भाषाई और आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है अविभाजित होना या कोई ऐसा कर्ज जो पूरी तरह से चुका दिया गया हो।
मतलब इसमें कुछ भी अधूरा या बटा हुआ नहीं होता।
बिल्कुल।
अगर इसे हम आम जीवन के नजरिए से समझें तो ये एक वैवाहिक रिश्ते जैसा है।
हाँ?
जब कोई इंसान अपने जीवन साथी से कहता है कि मेरा दिल पूरी तरह से तुम्हारा है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो इंसान कभी कोई गलती नहीं करेगा।
हाँ, वो कभी झुंझलाएगा नहीं या बहस नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है।
बिल्कुल, वो इंसान परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसकी निष्ठा, उसकी लॉयल्टी किसी और के लिए नहीं है, उसका दिल बटा हुआ नहीं है। हिस्किया का पूर्ण हृदय भी यही था। वो फ्लॉलेस नहीं था, लेकिन गहराई से कमिटेड था।
एकदम सही। और इसी अविभाजित निष्ठा के कारण वो चमत्कार होता है और उसे 15 साल का जीवनदान मिल जाता है। लेकिन यहाँ से मानव मनोविज्ञान का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है।
हाँ, ये वाला हिस्सा बड़ा अजीब है।
एक ऐसा इंसान जिसे मौत के दरवाजे से वापस लाया गया हो, जिसे 15 साल एक्स्ट्रा मिले हों, उससे हम किस तरह के रिएक्शन की उम्मीद करेंगे?
मतलब एक आम इंसान तो खुशी से पागल हो जाएगा। वो एक ग्रैंड पार्टी करेगा, हर किसी को अपनी चमत्कारिक रिकवरी की कहानी सुनाएगा। ये वैसा ही है जैसे किसी को लॉटरी में करोड़ों रुपए मिल जाएं।
हाँ बिल्कुल।
लेकिन अध्याय 38 में जो हिस्किया की लिखी हुई कविता दर्ज है, वो किसी भी एंगल से जश्न की कविता नहीं लगती मुझे। 11 में से 9 छंद केवल मौत के डर, कड़वाहट और गहरी निराशा से भरे पड़े हैं।
उन छंदों की भाषा बहुत ही डार्क है। वो अपने जीवन की तुलना एक ऐसे धागे से करता है जिसे बीच से काट दिया गया हो।
हाँ, वो कहता है कि मैं एक अबाबील या सारस की तरह रोता हूँ, मेरी आंखें आसमान की तरफ देखते देखते थक गई हैं। मतलब पूरी कविता में मुश्किल से 2 छंद ऐसे हैं जहाँ वो एक तरह का धन्यवाद देता है। ये देखकर तो यही लगेगा ना कि क्या ये व्यक्ति अपने इस चमत्कारिक जीवनदान के प्रति पूरी तरह से अनग्रेटफुल या कृतघ्न हो गया है। क्या उसे इस बात की कोई कदर नहीं है कि उसकी जान बच गई है? ये तो वैसा ही हुआ कि आपको करोड़ों की लॉटरी लगे और आप इस बात पे रोने लगे कि यार अब मुझे टैक्स देना पड़ेगा।
हाँ, सुनने में तो ये कृतज्ञता ही लग सकती है, लेकिन डॉक्टर ऑसवाल्ड का जो एनालिसिस है वो इसे एक अलग ही दिशा में ले जाता है।
अच्छा,
ये कविता अनग्रेटफुलनेस की नहीं है, बल्कि ये नश्वरता यानी मोर्टैलिटी की एक बहुत ही गहरी और दर्दनाक एक्सेप्टेंस है। यशाया इस कविता को यहाँ रखकर एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ रहे हैं।
कैसा भ्रम?
देखिए, अध्याय 7 से 12 तक एक ऐसे मसीहा की बात की गई थी जो सब कुछ ठीक कर देगा। लोगों को लग सकता था कि अश्शूर को हराने वाला और मौत को चकमा देने वाला हिज़किया ही शायद वो अल्टीमेट हीरो है।
ओह, अब मैं समझा। लेकिन यशाया ये साफ कर रहे हैं कि हिज़किया चाहे कितना भी महान राजा क्यों ना हो, उसने चाहे कितने ही पूर्ण हृदय से शासन क्यों ना किया हो, वो एंड में केवल एक मरणशील इंसान ही है।
बिल्कुल, उसे 15 साल मिले हैं, अमरता नहीं मिली है।
हाँ, वो मानवता का अंतिम तारणहार नहीं हो सकता, क्योंकि उसे भी एक दिन उसी अंधेरे कब्र में जाना है जिसका खौफ उसकी कविता में साफ दिख रहा है।
सही कहा। और इंसान के इसी मरणशील स्वभाव और उसकी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का सबसे चरम रूप हमें अध्याय 39 में देखने को मिलता है।
वो कूटनीतिक भूल वाला एपिसोड?
हाँ, 15 साल का ये जीवन दान मिलने के बाद हिज़किया के अहंकार के कारण एक ऐसी घटना घटती है जो आने वाली पीढ़ियों का इतिहास बदल कर रख देती है।
वो घटना सच में हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। होता ये है कि बेबीलोन के राजा मेरोदक बलदान के दूत यरूशलेम आते हैं। अब जरा उस समय के भूगोल की कल्पना करें। रेगिस्तान और इतने दुर्गम रास्तों को पार करके करीब 600 से 1000 मील का एक बहुत ही थका देने वाला सफर तय करके वो दूत आते हैं। और क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना था कि हिज़किया एक भयानक बीमारी से ठीक हो गया है।
और बेबीलोन उस समय एक उभरती हुई बहुत बड़ी शक्ति था। वो सांस्कृतिक और बौद्धिक ज्ञान का केंद्र था। खुद को दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड लोगों में गिनने वाले बेबीलोन के दूतों का यरूशलेम जैसे एक छोटे से राज्य में आना बहुत बड़ी बात थी।
मतलब इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में समझना हो तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी छोटे से कस्बे के सरपंच के घर अचानक से Washington DC, पेरिस या लंदन के सबसे पावरफुल डिप्लोमेट्स आ पहुंचे।
हाँ बिल्कुल, वैसा ही।
और कहें कि वो उसके मुरीद हो गए हैं, तो कोई भी इंसान इस तरह का अटेंशन पाकर अहंकार से फूल जाएगा। उसे लगेगा कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के बीच उठने बैठने लायक हो गया है। और हिज़किया के साथ भी यही हुआ।
जबकि यशाया के अध्याय 2 में यह भविष्यवाणी की गई थी कि एक दिन सभी राष्ट्र यरूशलेम में उस सर्वशक्तिमान का मार्ग सीखने आएंगे।
हाँ, हिज़किया के पास एक गोल्डन चांस था। वो उन दूतों को उस चमत्कार के बारे में बता सकता था जिसने उसकी जान बचाई थी।
लेकिन वो करता क्या है? वो आध्यात्मिकता या चमत्कार की कोई बात नहीं करता। इसके बजाय सक्सेस और ईगो के नशे में वो अपनी सारी तिजोरियां खोल देता है।
बाप रे।
वो उन्हें अपना सारा खजाना, सोने चांदी के भंडार, अपने हथियार, अपनी मिलिट्री पावर दिखाना शुरू कर देता है।
ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई इंसान फॉर्मूला वन के वर्ल्ड चैंपियन को अपनी नई खरीदी हुई साइकिल दिखाकर अपनी अमीरी साबित करने की कोशिश कर रहा हो।
मैं उन चीजों से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था जो उनके पास पहले से ही बहुत ज्यादा थी।
लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा था?
इस दिखावे के पीछे की साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। ये दिखावा सिर्फ बड़बोलापन नहीं था, ये एक पॉलिटिकल चाल भी थी। हिस्किया शायद उन्हें ये साबित करना चाहता था कि वो एक केपेबल और धनवान सैन्य सहयोगी बन सकता है।
अच्छा,
लेकिन सोचिए, जो व्यक्ति संकट के समय ईश्वर पर भरोसा कर रहा था वो अब शांति के समय में विदेशी गठबंधनों और अपने खजाने पर भरोसा कर रहा था।
मतलब सर्वाइवल मोड में उसने ईश्वर को पुकारा, लेकिन सक्सेस मोड में आते ही वो खुद को ही सर्वशक्तिमान समझने लगा।
बिल्कुल, और इसका नतीजा बहुत ही भयानक हुआ। बेबीलोन के दूत उसकी सैन्य शक्ति से जरा भी प्रभावित नहीं हुए। एक भूखे भेड़िए की तरह उन्होंने बस ये देखा कि इस छोटे से राज्य में बेशुमार दौलत है और उसे बचाने वाली सेना बहुत कमजोर है।
मतलब उन्होंने सिर्फ लूट का माल देखा।
हाँ, और यशाया पैगंबर को ये बात तुरंत समझ आ गई कि राजा ने अपने अहंकार में कितनी बड़ी हिस्टोरिकल भूल कर दी है।
तो फिर यशाया ने क्या किया?
वे फौरन राजा के पास आते हैं और उसे एक झकझोर देने वाली भविष्यवाणी सुनाते हैं। वे कहते हैं, जो कुछ भी तुमने इन विदेशियों को दिखाया है, जो भी खजाना तुमने अपने अहंकार में फ्लॉन्ट किया है, वो सब एक दिन इसी बेबीलोन में ले जाया जाएगा। यहाँ एक तिनका भी नहीं बचेगा।
बाप रे।
और ये भविष्यवाणी महज कोई खोखली धमकी नहीं थी। करीब 150 साल बाद ये सच साबित हुई जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सार ने यरूशलेम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और सब कुछ लूट लिया।
लेकिन यशाया केवल खजाने के लूटने तक नहीं रुकते हैं ना, वे एक ऐसा श्राप देते हैं जो किसी भी पिता की रूह कंपा दे।
हाँ, वे कहते हैं कि हिजकिय्याह के अपने वंशज उसके बेटे बेबीलोन ले जाए जाएंगे और वहाँ राजमहल में उन्हें हिजड़े यानी यूनिक्स बना दिया जाएगा।
ये तो दाऊद के राजवंश के लिए एक विनाशकारी खबर थी। वंशावली के कटने का मतलब था राजाओं की उस चेन का हमेशा के लिए खत्म जाना जिस पर पूरे देश का फ्यूचर टिका था।
लेकिन इतनी भयानक खबर सुनने के बाद हिजकिय्याह का जो रिएक्शन था वो उसकी कूटनीतिक भूल से भी ज्यादा शॉकिंग है।
हाँ, वो कहता है कि तुमने जो ईश्वर का वचन सुना है वो अच्छा है, क्योंकि कम से कम मेरे दिनों में तो शांति और सुरक्षा रहेगी।
मतलब ये सुनकर किसी का भी खून खोल जाए।
बिल्कुल, आपको बताया जा रहा है कि आपका राज्य मिट्टी में मिलने वाला है, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद होने वाला है, और आपकी प्रतिक्रिया ये है कि चलो बढ़िया है, मेरी जिंदगी तो आराम से कट जाएगी।
ये एक पूर्ण हृदय वाले इंसान का इतना स्वार्थी रूप है जो सच में गले नहीं उतरता।
तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए?
यहीं से हमें मानव स्वभाव का सबसे कड़वा सबक मिलता है। भरोसा या ट्रस्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बस क्राइसिस के समय तिजोरी से निकालें और प्रॉब्लम सॉल्व होने पर वापस रख दें। ये जीवन जीने का एक कांस्टेंट तरीका होना चाहिए। हिजकिय्याह की ये कहानी साबित करती है कि महान से महान हीरो भी अपनी सक्सेस के मोमेंट्स में कितनी भयानक भूल कर सकते हैं।
ये हमें ये भी बताता है कि शांति और सक्सेस के टाइम इंसान का भटक जाना सबसे आसान होता है। अशूरियों की तलवारों के सामने जो आदमी अडिग खड़ा रहा, वो बेबीलोन के दूतों की झूठी तारीफों के सामने पिघल गया।
बिल्कुल, और यही कारण है कि यशाया की पूरी किताब बार बार ये इशारा करती है कि मानव जाति किसी भी इंसानी लीडर पर पूरी तरह डिपेंड नहीं रह सकती।
हाँ, इंसानी नायक हमेशा निराश करेंगे।
इसीलिए दुनिया को एक ऐसे सच्चे मसीहा की जरूरत है जो इस अहंकार, स्वार्थ और मोर्टैलिटी से पूरी तरह परे हो।
तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये समझना बहुत जरूरी है कि आध्यात्मिकता कोई एक बार का इवेंट या चेकबॉक्स नहीं है कि प्रार्थना की चमत्कार हो गया और बात खत्म।
एकदम सही।
ये रोजमर्रा की जिंदगी के फैसलों, सक्सेस और फेलियर के बीच बैलेंस बनाए रखने की एक कंटिन्यूस प्रोसेस है।
हाँ, इतिहास में दर्ज हिजकिय्याह का पतन एक चेतावनी है कि सक्सेस के टाइम हम्बल बने रहना क्राइसिस के टाइम डटे रहने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है।
बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, अब इस विस्तृत चर्चा को एंड करने से पहले हम शोध सामग्री के भीतर छिपा हुआ एक बहुत ही गहरा और शायद सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग विचार यहाँ श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहते हैं।
ये ऐतिहासिक कालक्रम से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट है जो पूरे पर्सपेक्टिव को ही बदल कर रख देता है।
देखिए, अगर हिजकिय्याह को वो 15 साल का एक्स्ट्रा जीवनदान नहीं मिलता तो जाहिर है वो बेबीलोन के दूतों को अपना खजाना कभी नहीं दिखाता। लेकिन इससे भी बड़ी बात एक और है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हिस्किया के बाद उसका बेटा मनश्य राजा बना।
हाँ।
और जब मनश्य गद्दी पर बैठा तब उसकी उम्र महज 12 साल थी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मनश्य का जन्म उन्हीं 15 सालों के दौरान हुआ था जो हिस्किया को उस चमत्कारिक जीवनदान के रूप में मिले थे।
और इतिहास गवाह है कि मनश्य को बाइबल के इतिहास में सबसे बुरे, सबसे क्रूर राजाओं में गिना जाता है। उसने अपने पिता के किए गए सभी अच्छे कामों को नष्ट कर दिया, यरूशलेम को निर्दोषों के खून से भर दिया और पूरे देश को नैतिक और आध्यात्मिक पतन की उस खाई में धकेल दिया जहां से यरूशलेम कभी वापस नहीं लौट सका।
तो ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हम सोच सकते हैं कि क्या कभी कभी जिस चीज के लिए हम सबसे ज्यादा रो रोकर सबसे ज्यादा शिद्दत से प्रार्थना करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हिज़किया ने अपने जीवन को बढ़ाने के लिए की थी।
हाँ?
क्या उसका मिल जाना ही असल में हमारी सबसे बड़ी तबाही का कारण बन सकता है? हम अपनी लिमिटेड ह्यूमन विजन से ये नहीं देख सकते कि आज की हमारी सबसे बड़ी जीत कल हमारी सबसे बड़ी हार का कारण कैसे बन सकती है?
इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।